đã tài kla sơn ra thả Satrano Niso Chonsut Guru R Bát chal rây thi Yoga kaha jata hai to wo baap hi tera और उनको कहा जाता है ज्ञानेश्वर यानी ईश्वर में ही ज्ञान है. ऐसे तो मनुष्य बहुत अपना नाम रख देते हैं. बाबा ने समझाया था ना, ज्ञानेश्वरी गीता भी है. तो इसका नाम है सच सच ईश्वर, जिनमें ज्ञान है. कौन सा ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान. उसको ही कहा जाएगा ज्ञानेश्वर. अर्थात ज्ञानियों का ईश्वर. अब ईश्वर में किसकी नॉलेज है? रचना की, क्योंकि ईश्वर ही सृष्टि को रचते हैं. इसलिए उस रचने वाले को ही रचयिता कहा जाता है. अभी तुम बैठ करके कहते हो ना रचयिता है, तो जरूर रची हुई सृष्टि है. तब तो कहते हैं ना कि ईश्वर ही रचयिता है. और सृष्टि रची हुई है, तो रचयिता को हमेशा बाप कहा जाता है. भाई भाई को रचयिता नहीं कहेंगे, बहन भाई को रचयिता नहीं कहेंगे. तो अभी बच्चे जानते हैं कि बरोबर हमारे सन्मुख है. ये जहां भी होगा वहां ऐसे समझेंगे कि हमारे सन्मुख है, क्योंकि दूर भी तो बाप ही होते हैं. कोई बच्चा बिलायत में रहता है, कोई बॉम्बे में रहते होंगे, तो कहेंगे बाप हमसे दूर है. फिर भी याद तो जरूर करेंगे ना, भूलेंगे तो नहीं ना. तुमको भी तो भूलना नहीं है. परंतु जबकि लौकिक बाप देखते हैं और ये संबंधी देखते हैं तो भूल जाते हैं. इसलिए बाप कहते हैं. निरंतर उठते बैठते चलते अपन को आत्मा समझ करके एक ही प्रैक्टिस करो. मैं इस अपने शरीर को घुमाने ले जाता हूं, क्योंकि आत्मा बगैर शरीर की पालना कैसे कर सकती है. उठे बैठे चले फिरे कैसे? तो अभी तुम बच्चों को आत्मा का तो ज्ञान है ही. ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि नहीं है किसी को. बाकी ये जानते हो कि आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल. ऐसे नहीं कहेंगे परमात्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल. बाप तो बच्चों के सन्मुख बैठे हुए हैं और समझाए देते हैं चुल्लू पानी एक ड्राप भी बस है. काहे का ज्ञान? ज्ञान का ड्रॉप, यही ज्ञान है, इसको ज्ञान कहा जाता है, नॉलेज कहा जाता है कि परमपिता परमात्मा तुम्हारा बाप है, जो अब कहते हैं मैं तुम सबका बाप हूं, क्योंकि ऐसे कोई भी सन्यासी कहने की हिम्मत नहीं करेंगे कि हम तुम सबका बाप हूं। अरे तुम तो कहते हो सर्वव्यापी है, सब ईश्वर हैं, तो उनका बाप तुम कौन हो सकते हो? इसलिए कोई भी दूसरा मनुष्य मात्र जो सर्वव्यापी कहने वाले हैं, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम तुम्हारा बाप हूं और परमधाम में रहने वाला हूं, जिसको तुम याद करते हो, पतित पावन भी कहते हो, ज्ञान का सागर भी कहते हो, सर्कमस्टांसेस को भी तुम जानते हो, बरोबर लड़ाई सामने खड़ी है, कलयुग का अंत है और बरोबर यादव कौरव पांडव खड़े हैं, ये समझाना तो होता है ना, तो सारी बातें समझाने की हैं। तुम ऐसे मत समझो कि ये रखे हुए चित्र और कोई इनको जाकर के समझे, नहीं, स्कूल में कोई नहीं पढ़ा हुआ होगा और वो कॉलेज में जावे और वर्ल्ड का व हिंदुस्तान का या कोई भी नक्शा देखे तो बैठ करके उनको देखता रहेगा, समझेगा कुछ भी नहीं, जब तक टीचर न समझाए कि ये इंडिया है, ये लंदन है, ये पेरिस है, ये फलाना है। समझाने बगैर तो वो उनकी बुद्धि में भी नहीं आवेगा। अगर नाम भी पढ़ेंगे, जानता होगा तो भी उनकी बुद्धि में सिर्फ ये नाम लिखा होगा, इंग्लैंड कहाँ है, वहां कौन राज्य करते हैं, किस प्रकार के मनुष्य हैं, कोई भी आज समझ नहीं सकते हैं जब तक कोई उनको समझावे। ये अफ्रीका है, उनमें कौन रहता है, भले नाम पढ़ते हैं परंतु उनको कुछ भी आएगा नहीं बुद्धि में। काम के आधार पर नाम रखे हैं तो बुद्धि में तो आना चाहिए ना, १७/९/१९६४ की वाणी का तीसरा पेज। यहां तो समझाने की बात है और हर बात समझाने की होती है, उसमें भी तुम बच्चों को तो समझाया गया है कि जब भारत अविनाशी खंड होता है, और पहले पहले तो दूसरा कोई खंड होता ही नहीं है, तो ये समझाने की बात है ना। भले समझाने के लिए बॉम्बे में एग्जीबिशन भी करते हैं, उसका नाम रखा है न्यू वर्ल्ड एग्जीबिशन, ऐसे कुछ नाम रखा है, तुम देख लेना। आज चले जाएंगे कागज जो एडवर्टाइजमेंट बनाए रहे हैं, अच्छा है, बॉम्बे में ये जो एग्जीबिशन निकाला है, आजकल तो भवका पहले चाहिए ना, एग्जीबिशन क्या हुआ जड़ चित्रों का है, भवका हुआ, آج کل کی دنیا میں بھبکا چاہیے، کوئی بڑی بات لکھ دو تو آدمی آ جائیں گے، چھوٹی بات لکھنے سے آدمی آتے ہی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے لکھا بھی کچھ ایسے ہی ہے، نیو ورلڈ ایگزیبیشن۔ ریویلیشن آف نیو ورلڈ بائی گاڈ، تو تم کو دیکھنا چاہیے۔ پوسٹ جب آتی ہے تو ایسے ایسے جو بچے ہیں انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ یہ تمہارا کام ہے ان بچوں کو دینا، خاص کر کے کمارکا کو، اور ان کو بھی تھوڑا سمجھانا۔ جو سروس سے تتپر ہیں اور بھاشن کر سکتی ہے، کیونکہ انگریزی میں ہے، جن کو سمجھانے کی بات کہی ہیں کمار کا اور ان کو، مانے کن کو؟ ایگزیبیشن بنی تو بامبے میں، لیکن بتایا کہ ان کو بھی سمجھانا اور کمارکا کو بھی سمجھانا۔ کیوں سمجھانا، اس کا کارن کیا بتایا؟ کیونکہ ایگزیبیشن انگریزی میں بنی ہوئی ہے اور کمارکا، اور جن کی طرف اشارہ کیا ان کو کون؟ برہما بابا۔ یہ اتنی انگریزی تو جانتے نہیں ہیں، تو ان کو سمجھانا ہے۔ تو سب بات میں انگریزی جاننے والا چاہیے۔ خاص کر کے ان کمارے کا اور ان کو کیوں کہا؟ خاص کر کے اس لیے کہا کہ کمار کا سروسیبل ہے۔ کیا سروسیبل ہے؟ اور یہ بھی سروسیبل ہے۔ کون ہے؟ برہما بابا۔ تو دونوں جو سروسیبل ہیں، ان کو انگریزی میں تو نہیں سمجھ میں آئے گا، تو انگریزی میں ان کو بہت باتیں سمجھانی پڑے۔ انگریزی جاننے والا ہی چاہیے کہ ایگزیبیشن میں کیا کیا کرتے ہیں، یہ تم کو بھی اچھی طرح سے جاننا پڑے۔ تم کو مانے کس کو؟ ہے تم کو کس کو کہا؟ ہیں کس کو؟ تم کو سامنے والے سے کہا جاتا ہے یا بازو والے سے کہا جاتا ہے؟ تو تم کو کس کو کہا؟ ہیں رودرمالا کے بڑکوں کو کہا، جن کو سامنے ایمرج کر کے بابا بات کرتے تھے، کیونکہ مما تو وہاں ایگزیبیشن میں جا کر کے کھڑی نہیں رہے گی نا، بچے ہی جائیں گے. وہ آ کر کے جب ان کو بتائیں گے کہ یہ جگدمبا ہے, یہ سبھی منوکامناؤں کو پورن کرنے والی ہے, منوکامنائیں سدھ کرنے والی ہے, اور یہ جگدمبا جھاڑ کے نیچے دکھاتے ہیں منوکامنائیں پورن کرنے والی. کام دھینو ہے, کون سی دھینو بتائی؟ دھینو مانے گائے. کیسی گائے ہے؟ کام دھینو کیا مطلب ہے؟ جو بھی مانویہ کامنائیں ہیں ان سبھی مانویہ کامناؤں کی پورن کرنے والی ہے. تو وہ آئے گا ملنے کے لیے, کون آئے گا؟ سمجھنے والا مما کے پاس سمجھنے کے لیے آئے گا, ملنے کے لیے آئے گا. وہاں مما یا بابا جائیں گے تو پھر اتنا پربھاؤ نہیں پڑے گا. تو مما کے بارے میں سمجھائیں گے تو پربھاؤ پڑے گا. باقی ان کو ڈائریکشن دینا ہے کہ یہاں ماں ہے جس کو تم لوگ جگدمبا کہتے ہو. جگت پتا تو پرم پتا پرماتما ہی ہے, تو ضرور ماں ہوگی. جگت پتا کے ساتھ جگت ماتا بھی ہوگی. پتا ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ماں ہے. پھر ان کو یہ جگدمبا اور ان کو کہہ دیتے ہیں, یہ ان کو ان کو کیا ہوا؟ ان کو یہ ہے جگدمبا, ان کو کہہ کے دور کیوں کیا؟ 64 میں تو مما تھی نا, ہے مانا بھوشیہ میں وہ جگدمبا کا پریکٹیکل پارٹ آنے والا ہے, اس کے لیے بولا ان کو یہ جگدمبا, ان کو کہہ دیتے ہیں کیونکہ کلش ہے ان کے اوپر رکھا جاتا ہے. کن کے اوپر؟ ہاں ماتاؤں کے اوپر. تو ماتاؤں میں بھی مکھی ماتا کون ہوئی؟ جگدمبا مکھی. جگدمبا کے اوپر کلش رکھا جاتا ہے بھکتی مارگ میں. ہے ज्ञान रस बांटने का कलश किसके ऊपर रखा गया है? लक्ष्मी के ऊपर रखा गया. इसलिए बोला फिर उनको ये जगदम्बा इनको कह देते हैं, क्योंकि कलश इनके ऊपर रखा जाता है. तो ये इनके कौन हुआ? لکشمی مانا چھوٹی ماں یا بڑی ماں؟ ہے چھوٹی ماں. چھوٹی ماں میں کون پرویش کرتی ہے؟ مما اوم رادھے پرویش کرتی ہے چھوٹی ماں میں. چھوٹی ماں پرویش کرتی ہے اور بڑی ماں میں؟ بڑی ماں پرویش کرتی ہے. نام ہے کہ برابر پرم پتا پرماتما گیان ساگر آ کر کے کلش ماتاؤں کے اوپر رکھتے ہیں. اس مکھی ماتا گائی ہوئی ہے جگدمبا. پھر ان کی شکتی سینا तो ये सभी बातें कोई होशियार बैठ करके समझाएंगे। समझाएंगे माना कब की बात, भविष्य में। वहां फिर एग्जीबिशन में छोटी छोटी कम अकल वाली सेकेंड ग्रेड घोड़े सवार न चल सके तो फिर महारथी चले, प्यादा तो बिल्कुल ही नहीं चले, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमारियां तीन प्रकार की हो ना। एक है प्यादी, दूसरी है घोड़े सवार और वो है महारथी। हमेशा तीन प्रकार का उत्तम मध्यम कनिष्ठ ये अच्छी तरह से गाया जाता है। सो तो बाप जाने और मम्मा जाने कि उत्तम कौन है, मध्यम कौन है, कनिष्ठ कौन है। और कोई बच्चे तो जान सकते होंगे कि नहीं जान सकते होंगे, है जान सकते हैं तो बताओ उत्तम कौन, मध्यम कौन और कनिष्ठ कौन है। सूर्यवंशी माँ उत्तम, तो फिर नारी से क्या बनेगी। बाबा ने लक्ष्य दिया है, नारी से क्या बनना है, लक्ष्मी बनना है, तो उत्तम तो लक्ष्मी बनती होगी। अरे चुप हो गए, लक्ष्य प्राप्त करेगी या नहीं करेगी, करेगी। तो उत्तम जो माता होगी वो तो लक्ष्य प्राप्त करेगी ना, नारी से लक्ष्मी बनेगी ना, बनती है, है? सूर्यवंशियों की मां लक्ष्मी बनती है नहीं बनती। तो फिर उत्तम कौन, मध्यम कौन और कनिष्ठ कौन। अरे त्रिमूर्ति में जो तीन देवताएं हैं उनमें भी तो दिखाया है, क्या दिखाया, उत्तम मध्यम और कनिष्ठ। तो ये तीन माताएं भी होनी चाहिए। कौन है उत्तम, फिर मध्यम कौन है, उत्तम तो लक्ष्मी हो गई, फिर मध्यम कौन। अरे ये अच्छी तरह से गाया जाता है, इनका गायन है। जाएंगे कोई नए नए सेंटर्स वाले तो वो बेचारे क्या जाने, उनको ब्रह्मा कुमारी चाहिए जो बैठ करके मुरली पढ़ करके ऊपर कुछ समझावे। जो मुरली पढ़ी है उसके ऊपर समझावे, बाकी तो किसको मुरली भी न हो तो उनको कोई हर्जा ही नहीं है। किसको पंद्रह रोज मुरली नहीं मिलती है, वो समझाती रहती है। उसमें भी आजकल बाबा समझा रहे हैं कि अच्छी तरह से बस बाप का परिचय दो, कि वो लौकिक बाप, वो पारलौकिक बाप, वो आते ही स्थापन करने तब जबकि विनाश होने का होता है। विनाश सामने खड़ा है, अभी देरी नहीं करो, समझा ना? बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। इस समय का गायन है, है? ये गायन किस समय का है? बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। यज्ञ की आदि का गायन है, मध्य का गायन है, कब का गायन है? है? मध्य का गायन, छिहत्तर का गायन है, है? अरे बाबा ने तो इशारा दे दिया ना, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं, तो वो टाइम कभी पूरा होता है कि नहीं होता है? नंबर वार तो उसी टाइम के लिए इशारा दिया कि पुरुषार्थ के लिए बहुत टाइम गया, बहुत गई थोड़ी रही, और थोड़ी की भी थोड़ी रही। ये याद कर देना है कि ये विकर्म का बोझा जन्म जन्मांतर का है, वो काय की याद से खत्म होगा? हैं? बाप की याद से खत्म होगा। योग कोई मासी का घर नहीं है, अथवा याद कोई मासी का घर नहीं है जो बाप को याद करे तो विकर्म विनाश हो जाए। 17/9/1964 की वाणी का चौथा पेज। तो फिर मिसाल देना चाहिए कि देखो बाबा और मम्मा ये मुख्य हैं, जो नंबर वन में जाने वाले हैं, है? कौन है नंबर वन में जाने वाले? हैं? कौन 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 हुए बाबा मम्मा? है लक्ष्मी नारायण। क्या बताया? वो मम्मा बाबा है संगमी लक्ष्मी नारायण। नारायण को बाबा कहेंगे? हैं? और नारायण में शिव होगा तो बाबा कहेगा? संगमी जी पुरुषार्थ। बाबा ने मुरली में बोला वास्तव में ब्रह्मा सरस्वती को भी मम्मा बाबा नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर यही मम्मा बाबा होते तो यज्ञ के आदि में यही मुखिया होते। यज्ञ के आदि में इनको भी पढ़ाने वाले कोई थे या नहीं थे? तो जो थे आदि में वो ही अंत में प्रत्यक्ष होते हैं। जो नंबर वन में जाने वाले हैं, नंबर वन माने है? نمبر ون، نمبر ٹو، نمبر تھری ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو بتاؤ گناؤ کون کون؟ ارے ارے نمبر ون نارائن بنتے ہیں، نمبر دو کے نارائن بنتے ہیں، نمبر تین کے نارائن بنتے ہیں، نو نارائن بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ تو یہ مما بابا ہیں مکھی جو نمبر ون میں جانے والے ہیں، نمبر ون میں کون سے یوگ کی بات ہوئی ہے؟ پرشوتم سنگم یوگ میں نمبر ون، پھر بعد میں جو آئیں گے نمبر وار نارائن وہ پھر نمبر وار ہو جائیں گے ستیوگ میں، تو ان کا بھی کچھ نہ کچھ حساب کتاب یوگ اور گیان کا محنت کرتے کرتے بھی اس سمے کا رہا ہوا ہے. کن کا حساب کتاب رہا ہوا ہے سن 64 میں؟ جو نمبر ون مکھی ہیں ان کا بھی کچھ نہ کچھ حساب کتاب یوگ اور گیان کا، یوگ اور گیان کی محنت ہوتی ہے نا، تو محنت کرتے کرتے بھی سمے رہا ہوا ہے. منا سن 64 سے پہلے بھی انہوں نے محنت کی ہے گیانی اور یوگ کی، پھر بھی حساب کتاب کچھ نہ کچھ رہ گیا. تو برہمن جیون میں جن کا حساب کتاب رہ جاتا ہے تو اگلے جنم میں ایڈ ہو جاتا ہے. اس لیے اگر کوئی دیری سے آئیں گے تو بتاؤ وہ یاد سے کتنا اپنا وکرم وناش کر سکیں گے؟ بڑی مشکل ہوگی پھر دیری سے آئیں گے تو. تم ڈھنڈورا پٹوا دو نا، پھر تم بچوں کے اوپر کوئی بھی ان کی رہے نا، بولو ہم تو ڈھنڈورا پٹواتے ہی رہتے ہیں، نمنترن دیتے ہی رہتے ہیں، اخباروں میں ڈالتے ہی رہتے ہیں. اخباروں میں بھی ایسے ہی ڈالنا چاہیے جیسے ڈھنڈورا پٹوایا تھا نا. بابا نے ایک ڈھنڈورا لکھ دیا تو تمہارا جو ہے وہ چھوٹ جائے گا، پھر بھلے دوسرے اخبار والے ان میں سے کاپی کریں یا نہ کریں، پرنتو سبھی لینگویجز میں بھی جتنا ہو سکے جتنا نمنترن سبھی کو ملنا چاہیے کہ بے حد کا باپ آیا ہوا ہے، اس میں ایسا لکھنا ہے نا. بابا نے چھپوایا بھی تھا پرنتو اتنا کوئی اٹینشن سب بات کے اوپر نہیں جاتا ہے. اپنے لوکک باپ کا ورثہ تو جنم جنمانتر لیا، اب آ کر کے پار لوکک باپ کا بے حد کا 21 جنم کا ورثہ لینے کا سہج راج یوگ، یہ پرشارتھ کرو. یہ نمنترن تو تم کو بہت اچھی طرح سے لکھ کر اخباروں میں بھلے دوسری لینگویجز بھی ہوں ان کو بھی دینا چاہیے، کیونکہ جو بھی بڑے بڑے ہیں، بڑے بڑے شہر ہیں، گاؤں والے ہیں، اکثر کر کے دلی میں ان کے ایجنٹس رہتے ہیں. سب سے جاستی رہے گا دلی میں، سب سے جاستی تمہاری سروس ہوگی دلی میں. کیوں؟ दिल्ली में सबसे जास्ती सर्विस क्यों होगी? हाँ, क्योंकि फिर भी तो सेंटर है वहां का, सारे इस भारत की गद्दी है ना, तो वहां अखबारों के सब एजेंट्स रहते हैं। इतनी मेहनत करनी चाहिए जो सबको ये निमंत्रण मिले कि बेहद का बाप आया हुआ है, सर्कमस्टांसिस ऐसे दिखलाना है, साबित कर देना है ये यादव है, ये कौरव है, ये पांडव है, कहां है, कहां है, संगम युग में बात कहां की हो रही है? दिल्ली की बात हो रही है। क्राइस्ट के, इस्लामियों के, बौद्धियों के ठिकाने तो कुछ भी नहीं है, उनका भी उद्धार करने वाला वो है, तो किनका तीर्थ बड़ा हुआ? तीर्थ बड़ा ही हुआ परमपिता परमात्मा पतित पावन का। वो लोग इतना भी नहीं समझते हैं कि क्राइस्ट वगैरह ये सभी पुनर्जन्म लेकर के पतित बने होंगे, बहुत थोड़े कोई जानते हैं। जानते तो जरूर हैं, क्राइस्ट भी यही है, ये क्रिश्चियन लोग जानते हैं। वो जाकर के पोप से सुने तो वो बताए देंगे कि बरोबर पुनर्जन्म होता है। इस समय में क्राइस्ट जरूर तमो प्रधान में आएगा, क्योंकि झाड़ तो है ना। ट्री को सब लोग मानते हैं, क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं। किसको है? ट्री को मानते हैं। अरे, वृक्ष की मान्यता है या नहीं है? तो बोलो, जरूर पुनर्जन्म तो सबको मिलेगा ना, नहीं तो कहां से आएंगी आत्माएं? कहां से आई क्रिश्चियंस की इतनी आत्माएं? जरूर सेक्शंस हैं तुम्हारे पास, तो समझाने के लिए ये बड़ा अच्छा झाड़ फर्स्ट क्लास, तो इसमें देखो क्राइस्ट लगा हुआ है ना। हिस्ट्री जरूर रिपीट करेंगे, जरूर क्राइस्ट फिर आएगा। कब आएगा? ये बड़ी अच्छी चीज है। क्या? जाड़ का चित्र। बच्चों की बुद्धि में अभी इतनी वैल्यू नहीं है, कौन से बच्चों के लिए बोला है? किनको वैल्यू नहीं है जाड़ की है? जो भी बाबा के सन्मुख बैठे हुए थे, इमर्ज करने वालों की तरफ नहीं कहा, बोला बच्चों की बुद्धि में अभी इतनी वैल्यू नहीं है जैसे नंबर वार बाबा कहते हैं। महारथियों के पास कुछ वैल्यू, घोड़े सवार के पास सेकंड ग्रेड में वैल्यू, थर्ड क्लास में इतनी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि खुद इतना पूरा समझते नहीं है। तो समझाने के लिए एग्जीबिशन खुला है, इसमें कोई शो या आर्ट नहीं है। वो तो आर्ट गैलरीज खोलते हैं, किसकी बात बताई? है? अरे शो करने के लिए आर्ट करते हैं ना, आर्ट दिखाते हैं ना, आर्ट गैलरीज, समझाने के लिए एग्जीबिशन खोला है। शो शराबे की बात नहीं है, वो दुनिया वाले तो आर्ट गैलरीज खोलते हैं, उसमें तो ऐसे ही चरिए खरिए चित्र ले आते हैं। बाहें यहां लगी, वो समझते हैं डांस करने का यही एक आर्ट है। 1764 की वाणी का 5वां पेज कैसे खड़े करके बतलाते हैं, गोपियों का भी चित्र बनाएंगे, गोपियों की पतली कमर कर देंगे, पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं। अब है तो कुछ भी नहीं, जैसे तुम हो मनुष्य ऐसे ही है, कोई भी पतली कमर थोड़े ही है। देखो इन लक्ष्मी नारायण की पतली कमर कहां है? ठीक जैसे होते हैं तैसे होते हैं, ये सभी नॉनसेंस निकाली हुई है कहां कहां से है? ये दिखावा दिखावा करने की नॉनसेंस कहां से निकाली हुई है? भक्ति मार्ग में जो किस्म किस्म के चित्र बनाए हैं तो समझते हैं वहां देवताएं ऐसे थे, है? कैसे थे देवताएं, कैसे थे? अरे ऐसे पतली कमर वाले कोई देवताएं होते होंगे? देवताएं तो एकदम हूबहू ऐसे हैं जैसे अभी इस समय में अच्छे खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी वाले बच्चे हैं, क्योंकि बाबा ने समझाया है ना कि 5 तत्व इस समय में तमो प्रधान है, जिन 5 तत्वों से शरीर बनते हैं। मां सत्युग में सतो प्रधान तत्व होते हैं, तो उनसे काया कल्प वृक्ष समान बन जाती है। मुसाफिर आते हैं ना, इसके लिए नाम ही रखा हुआ है कृष्ण गोरा कृष्ण सांवरा। कहां का नाम रखा हुआ है, है? अरे नाम काम के आधार पर रखा हुआ है ना, तो कहां का नाम रखा हुआ है शास्त्रों में, है? अरे संगम युग की ही बातें हैं, कृष्ण गोरा कृष्ण सांवरा। एक या दो? एक ही है। क्यों? संगम युग में कृष्ण की आत्मा दो शरीरों से पार्ट नहीं बजाती है, पहले सांवरा फिर बाद में गोरा। समझा ना, वहां शरीरों की कोई मरम्मत नहीं होती है जितनी यहां करते हैं। कहां शरीरों की मरम्मत नहीं होती है, है? सत्युग में मरम्मत नहीं होती है, कहां करते हैं मरम्मत शरीरों की? इस दुनिया में डॉक्टर लोग कितने ऑपरेशन करते रहते हैं, कितनी मरम्मत करनी पड़ती है। वहां तो भले बुड्ढे भी हो जाओ, तुम्हारे दांत वगैरह सब साबुत रहेंगे। मजाल है जो वहां कोई का एक दांत भी टूट जाए, ला नहीं कहता है। क्योंकि दांत टूटा तो डिसफिगर हुआ, यानी देखने में कुछ बुरा लगेगा। तो वहां ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है, एकदम सोलह कला संपूर्ण, शरीर भी ऐसा फर्स्ट क्लास, कभी झूंझा हो कभी चूंचा हो, चंगाले या लंगड़े लूले वहां होते ही नहीं है। यहां तो लंगड़े लूले भी जन्म ले लेते हैं, कहां है? संगम में, बाहर की दुनिया में नहीं, बाहर की दुनिया में भी और यहां भी। कौन है लंगड़े लूले चूंचे चाचे हैं? कौन हैं? मन बुद्धि से लंगड़े लूले, लंगड़े जो हैं उनको कहा, जो पुरुषार्थ की दौड़ में भाग नहीं सकते हैं। क्या पवित्रता की टांग कैसी है? टूटी हुई है, कितना भी प्रयास करें। लूले कौन है? हैं? जिनको कोई सहयोग करता ही नहीं है। सहयोग किसको मिलता है? हैं? सहनशील को सहयोग मिलता है कि जिसमें सहनशीलता है ही नहीं उसको सहयोग मिलता है? हैं? सहनशील को सहयोग मिलता है। कोई चूंचे है, झुंझार है, आंखों से थोड़ा थोड़ा चिमदा चिमदा दिखाई पड़ता है, पूरा दिखाई नहीं पड़ता है, माने ज्ञान की खूब गहरे की बातों को समझ नहीं सकते। तो देखो यहां लंगड़े लूले भी जन्म ले लेते हैं, अंधे भी जन्म ले लेते हैं। अंधे कौन है? हैं? जिनको कितना भी समझाओ है ज्ञान की आंख काम ही नहीं करती है। हैं? चूचा माने एक आंख में दिखाई पड़ता है, एक आंख में बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता। दो चार मत्थे वाले भी जन्म ले लेते हैं। क्या कहा है? कहां की बात बताई? यहां, यहां माने क्या? कहां है? यहां माने कहां? संगम युग में, बाहर की दुनिया में नहीं। बाहर की दुनिया में भी दो चार मत्थे वाले जन्म लेते हैं तो यहां भी जन्म, यहां कैसे है? अरे कार्तिकेय को कितने मत्थे दिखाए? छह मत्थे दिखाए। कुछ अर्थ होगा है? क्या अर्थ हुआ? जितने मुख होंगे तो उतनी तरह की बातें करेंगे, क्या एक ही तरह की बात करेंगे? यहां बिल्कुल ही, वहां नई दुनिया में बिल्कुल ही एक्यूरेट, माना वहां एक मत्थे वाले होंगे सब, कि अनेक मत्थे वाले रावण भी होंगे है? एक मत्थे वाले होंगे एक बात। तो देखो उस दुनिया के तुम मालिक बनते हो, परिस्थान के मालिक बन रहे हो, क्योंकि अभी कब्रिस्तान है ना भारत, इस समय में कब्रिस्तान है। और कहते भी हैं बरोबर सभी कब्र दाखिल, और फिर एक ही मुसाफिर आते हैं। मुसाफिर तो समझते हो ना, ऐसे हो तो तुम भी मुसाफिर, परंतु तुम मुसाफिर तो यहां आकर के पुनर्जन्म लेकर के पार्ट बजाते हो। और वो एक मुसाफिर कैसा है, है? वो आते हैं वो पुनर्जन्म नहीं लेते। और इस दुनिया में जितने भी हैं उनका पुनर्जन्म लेना भी बंद कराए देते हैं इस पतित दुनिया में। तुम मुसाफिर पतित बन जाते हो तो तुम्हारी ये हसीन आत्मा काली बन जाती है, आत्मा ही काली बनती है, उसमें खाद पड़ती है। काहे काहे की खाद पड़ती है, है? है? विकृति की खाद पड़ती है कि नहीं पड़ती है? कौन से युग से है? द्वापर से खाद पड़ती है, तब कलाएं कम होती हैं, है? सतयुग के आदि से ही खाद पड़ती है, ऊपर से जो नीचे नीचे पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं आती रहती हैं, उनके संग के रंग में आकर के हम भी नीचे गिरते रहते हैं। तो ये खाद पड़ती है। और ये ऐसा मुसाफिर है जो एवर हसीन है। क्या एवर हसीन माने है? ऐसा हसीन है किसके अंदर की रूहानियत कितनों के भी संग के रंग में आवे लेकिन इसकी रूहानियत कम होती ही नहीं, इसमें कोई खाद पड़ती ही नहीं है। वो खुद बैठ करके समझाते हैं मेरे में तो कोई खाद नहीं पड़ेगी। क्या कैसी भी नई नई आत्माएं आती रहे संग के रंग में, कलयुग के अंत वाली आत्माएं कीड़े मकोड़े जैसी क्यों ना आवे, जैसे पतंगे होते हैं ना, रात में ही जन्म लेते हैं सवेरे को खलास हो जाते हैं। कैसी भी निष्कष्ट जीवड़े संग के रंग में क्यों ना आवे लेकिन मेरे अंदर कोई खाद नहीं पड़ेगी, मैं तो सदैव सच्चा सोना। जिसको प्योर आत्मा कहा जाता है इसलिए मुझे बुलाते हैं, मैं प्योर हूं एवर पावन हूं, तब तो मुझे बुलाते हैं कि हे पतित को पावन बनाने वाले अर्थात एवर पावन रहने वाला बाबा आओ। फिर वो आकर के क्या करेंगे, आकर के क्या करो, हमको भी आप समान बनाओ। क्या कैसा बनाओ, हमको भी आप समान बनाओ। तो क्या एवर प्योर सबको बनाएंगे है? सबको तो एवर प्योर नहीं बनाएंगे, जैसे पढ़ाई पढ़ेंगे वैसे वैसे ही बनेंगे। हां सदा काल के लिए एवर नहीं बन सकेंगे, फिर भी कम से कम बनते तो बहुत है ना। देखो वहां जो आत्माएं रहती हैं पावन तो होंगी ना, पीछे भले किसी में ताकत कम होगी, जो पिछाड़ी वाले होते हैं भले ताकत कम है पर होंगे तो पावन ना, क्योंकि इनको पतित फिर बनना होता है। तमो प्रधान में सबको आना है, पर सतो प्रधान आत्माओं में भी ताकत है। जैसे नाटक में जाओ तो देखो कितने ढेर होंगे, फलाना होगा, उनमें उनको क्या मिलता होगा, उसको कम कहेंगे ना, ये एक्टर है, इतना कुछ वर्थ नहीं है, कोई 50, कोई 100, कोई 200 रुपया पगार मिलता होगा। जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते होंगे पता नहीं, तुमको पता है उनका कितना पगार होता होगा, देखते हो उनसे कितना पैसा निकलता है, लाखों रुपया चित्तियों में, भित्तियों में, फलानी जगहों में, क्या करें बेचारे। कहते हैं 30 दिन चोर के तो 1 दिन साधु का, तो देखो अभी ये गवर्नमेंट आ गई है, सबका ये फुलावा डाल रही है, सबका खाना खोलेगी, खोलेगी जरूर, '17-9-1964 की वाणी का छठा पेज, जहां लोभी होंगे वहां ठगी भूख न मरे, ऐसी बात सुनी है कभी? लोभी जो होते हैं ना, वो पैसा वैसा जाकर के कहां जमीन में छिपाए देते हैं, जमीन में खुद अपने हाथ से तो नहीं कुछ कर सकेंगे, जमीन में खुदाई करने के लिए तो फिर मिस्त्री चाहिए, मिस्त्री को मालूम पड़ जाता है कि इन्होंने खोला है, अरे तुमको मालूम नहीं है, बहुत मुनीम जी लोग होते हैं, नौकर लोग होते हैं, मोटर चलाने वाले होते हैं, ये सब जो होते हैं उनको मालूम पड़ जावे कि यहां इस समय में इसने पैसा कहां छिपाया है। अभी बारी है, उनको बोल देता हूं तुमने पैसा छिपाया है तो हमको भी कुछ दो, बोलेंगे कि नहीं है? नहीं बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, हम गवर्नमेंट को बोल देंगे, अभी हम पुलिस को बुलाता हूं, अभी देते हो या नहीं देते हो? नहीं देते हो तो अभी मैं पुलिस को बुलाता हूं, तो बताओ उस वक्त उनकी क्या जान रहेगी। ये सब अभी हो रहा है, कहां खड्डे में पूरा मिस्त्री को जान मालूम पड़ जाता है, अपने हाथ से तो कोई नहीं बना सकेंगे, तो मिस्त्री लोग जाकर के समझते हैं कि हमको मिलेगा, तो गवर्नमेंट के पास नहीं जाते हैं, उनको जाकर के पकड़ते हैं, देखो तुमने ये काम किया हुआ है, जो तुमने ये काम किया हुआ है जमीन में गाड़ने का, गड़वाने का, तुम्हारा ये चौपड़ा मेरे हाथ में आया हुआ है, अब इसकी खुदाई का 10,000 देते हो या नहीं देते हो, अभी इस समय में कहां से भी ले आकर के दो, नहीं तो अभी हम पुलिस में जाते हैं, वो देरी नहीं करते हैं, तो ऐसे ऐसे केस होते रहते हैं। ओम शांति।